لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی، ان کافروں کا یہی بدلہ تھا، پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے، اللہ ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے شک مشرق بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائے. اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے. اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. یہ تھی آیت نمبر 25 سے 28، 25 to 28. اس کے بھی دو عنوان ہیں. پہلا عنوان لکھیں گے، جب مسلمان اپنی اسلامیت کھو دیں، یعنی اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ دیں، تو غلبہ کیسے. دوسرا ٹاپک لکھے گا، جو معاشی دروازے مقامی سطح پر بند ہوئے وہ عالمی سطح پر کھل گئے. دو باتیں ہیں اس میں. پہلی بات حنین کے بارے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کر چکے تو اس کے کچھ مہینے کے بعد حنین کے مقام پر ایک جنگ ہوئی، غزوہ حنین کے نام سے ہے. 8 ہجری شوال کا مہینہ تھا، کچھ ماہ تھے صرف، یعنی رمضان کے اندر مسلمانوں نے قریش کو مکمل طور پر مغلوب کیا اور مکہ فتح ہوا. بلکہ اگلے ہی مہینے شوال میں ایک جنگ ہوئی قبیلہ حوارزن کے ساتھ. یہ وہ موقع تھا کہ مسلمان 12,000 کی تعداد میں تھے اور فتح مکہ کے موقع پہ صرف 10,000 تھے. اس وقت مسلمانوں کے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ واہ، آج کیا بڑی بات ہے، لو کل تو ہم قریشیوں کو شکست دے چکے تھوڑے تھے، آج تو دیکھو ہم ہیں ہی بہت. اور اتفاق سے اس موقع پہ جو سامنے دشمن تھا وہ بہت تھوڑے تھے، اور انہوں نے اس بات پہ اپنی تعداد کو مسئلہ بنا لیا. اور ہر دور میں یہی مسئلہ بنتا ہے، تعداد، کہ لوگوں کو گننے لگے. نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر عجب پیدا ہو گیا، اللہ نے چھکے چھڑا دیے. قبیلہ خوارزم نے ایسی تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، لیکن وہ شکست شکست نہیں تھی، اس لیے کہ ایک بہت بڑا سبق اس کے بعد مسلمانوں نے سیکھ لیا. اور وہ کیا کہ جمعیت کام نہیں کرتی، مسلمانوں کے بڑے بڑے جھنڈ اور لشکر کام نہیں کرتے، اصل بات جو ہے وہ اللہ کی ہے. جب بندے کے اندر اپنی ذات پہ فخر پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان سے اپنی مدد لے جاتا ہے. یہی بات وہاں تھی، یہی بات آج بھی ہے. آج مسلمان تاریخ کے ہر دور سے زیادہ ہیں، اتنے کبھی نہیں تھے، لیکن آج حال کیا ہے، وہی ہے جو حنین میں ہوا. پلٹنے کا راستہ کیا ہے؟ اسلام نہیں، اسلامیت لاؤ. جب مسلمان کی زندگی کے اندر اسلام آتا ہے تو اللہ کی مدد بھی آنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو اللہ پر اعتماد کرے گا اللہ اس کو کامیابی دے گا، لیکن وہ لوگ جو اپنی ذات پر بھروسہ کر کے گھمنڈ اور تکبر کا شکار ہو جائیں اور تیاری سے دور ہو جائیں، وہ نظم و ضبط سے دور ہو جائیں، وہ ایک ایسے ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں تو ہم جیت جائیں گے، تو یہ غیر فطری بات ہے، غیر حقیقی بات ہے. دیکھیے کہ جہاں کم لوگ ہوتے ہیں نا، تو ہر بندہ ہر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے خوب اچھے طریقے سے کرتا ہے، لیکن آپ آزما کے دیکھ لیں، جہاں زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں نا تو ہر ایک یہ سوچنے لگتا ہے وہ دوسرا کر لے گا، نیت نہیں خراب ہوتی، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں، اچھا وہ کر لے گا، میرا خیال ہے یہ اس کی ضرورت، ذمہ داری تھی اس کی تھی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کام کی کوالٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے انگلش کی ایک بات سنی ہوگی کہ سم باڈی ایوری باڈی اور نو باڈی، سم باڈی ول ڈو اٹ، ایوری باڈی تھاٹ اٹ اور نو باڈی ڈیڈ اٹ. سارے یہ سوچ لیتے ہیں سب کر لیں گے، کرتا کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی کہ بہت بڑی بھیڑ کی بجائے کام کرنے والے لوگ تھوڑے جو ہوتے ہیں، وہ کسی مقصد اور کسی کام کو زیادہ اچھا کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ بہت سارے لوگ صرف دعوے کرنے والے. دیکھیے یہاں کہا کہ اللہ کہتے ہیں ذاقت علیہم الارض، ان پر زمین تنگ ہو گئی. کیا آج مسلمانوں پہ تنگ نہیں ہوئی بھی؟ کیا آج مسلمانوں پہ چاروں طرف سے مشکلات نہیں؟ اور آج اگر جہاد سے دور ہٹے تو کیا پھر سکون میں؟ آج ہم اپنے گھروں میں جہاد نہیں کرتے، ہمارے گھر ہمارے لیے تنگ ہو گئے. آج ہم جہاں اللہ کے دین کی بات نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں خود ہمارے لیے رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک آیت کو ہائی لائٹ کیجئے اور اس کی تفسیر آپ حسن البیان سے بھی پڑھ لیں گے. پیچھے بات تھی کہ 4 ماہ کی مہلت ہے، اب وہ مہلت ختم ہونے کا رول جو تھا وہ اس میں دے دیا. آیت نمبر 29 کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. یہ تھا وہ اس حکم کے اوپر اب عمل درآمد جس کا صورت کے آغاز میں تذکرہ کیا گیا۔ اب جب واقعی مشرکین کو بند کر دیا گیا آنے کے لیے، تو مسلمانوں کو ایک فکر لاحق ہوئی، اور وہ کیا تھی کہ یہ کوئی زرعی ملک تو ہے نہیں کہ یہاں ہم محنت کر کے فصلیں اگا لیں گے اور ہماری اکنامکس اچھی رہے گی۔ عرب کی ساری اقتصادیات جو تھی یا ساری اس کی اکانومی جو تھی وہ تجارت پر تھی، اور تجارت کی بنیاد ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ ریلیشن شپس پہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ جب حرم کے اندر مشرکین کا آنا جانا بند ہو گیا، اس سے ہمارے تجارتی رشتے ناطے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آج مکہ میں ان کو کافر ہو کر آنے پہ پابندی لگ گئی ہے، لیکن یہ مشرک کل مسلمان بھی تو بنیں گے۔ اور یہی ہوا، جب یہ پابندی لگی تو عربوں نے پھر عمومی طور پر اسلام قبول کر لیا۔ دوبارہ وہ تجارتی سرگرمیاں جو تھی بحال ہوئیں، اور وہ لوگ جن کو اس بات کا ڈر تھا کہ آج مکہ کے اندر جو تجارت چل رہی ان لوگوں کی ریل پیل سے یہ ختم ہوگی، وہ ایک مقامی سطح سے اٹھ کر پھر بین الاقوامی سطح پہ چلی گئی۔ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں اس بات کا خوف رکھتا ہے نا کہ میں حرام کو چھوڑوں گا تو میری زندگی میں مشکلات آئیں گی، اس کے لیے یہ آیتیں بہترین موقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمان کو حرام کام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آنے کے بعد تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ چلے گئے کافر وہاں سے، مسلمانوں کی تجارت نہیں بدلی۔ آج دیکھ لیجیے اس کی دلیل، جتنا بزنس حرم کے ارد گرد ہے پورے سال کی ان کی تجارت جو ہے وہ انہی چند دکانوں پہ چلتی ہے۔ پورا ان کا سوشل سیٹ اپ جو ہے وہ انہی حاجیوں اور عمرہ کرنے کے لیے آنے والوں کی خرید و فروخت پہ ہے۔ اللہ حلال سے دے سکتا ہے، جو لوگ حرام سے لیتے ہیں اور نہیں چھوڑتے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کم ہوگا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ جب آپ مسلمان بن کے لوگوں کے اندر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے حلال مینس پیدا کر دیتا ہے جو کہ حرام میں نہیں ہوتے۔ تو یہاں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ کبھی اس غم سے کہ ہماری سیل کم ہو جائے گی، حرام کو ہی اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینی، کیونکہ جو اللہ حرام سے دے سکتا ہے وہ حلال سے بھی دے سکتا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ذلیل اور خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے دیں۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے۔ اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے یہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ یہ تھی آیت نمبر 29 سے 30، اس کا عنوان ہے زندہ ایمان کی علامتیں۔ دیکھیے جب ایمان زندہ ہوتا ہے نا، تو بندہ ہر واقعے کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی ذات ہے۔ وہ پھول کو سونگتا ہے تو اس کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشبو آتی ہے، وہ سورج کو دیکھتا ہے تو اس کو اس کے اندر سے اللہ کا نور دکھتا ہے، اور وہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے۔ اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق اللہ کا دیا ہوا حق نظر آتا ہے۔ لیکن جب بندے کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، وہ ایک رسمی اور ایک وہمی تعلق بن جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کو ایک مسجد میں بند کر کے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو چند ریچولس میں جوڑنے کے بعد پھر اپنے آپ کو دین والا سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو ایک ایسے دین کی بات بتائی کہ جو علماء اور راہبوں کا مقرر کردہ نہیں بلکہ اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ اللہ خالق ہے تو مالک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اسی طرح وہ شریعت کا بھی خالق ہے۔ جب قوموں میں زوال آتا ہے تو وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کریں، جس چیز کو حرام کریں۔ یہی غلطی کل یہود و نصارہ سے ہوئی، یہی غلطی آج کے ان مسلمانوں سے ہو رہی ہے کہ جنہوں نے دین کو موم کی ناک بنا کے جہاں بدلنا چاہا اور اس کو بدل دیا۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک بات کی خبر دیتے ہیں، اور وہ کیا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویعب اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اس بات کا انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے اور کافر نہ خوش رہیں۔ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک نہ پسند کریں۔ یہ ہے آیت نمبر 32 سے 33، 32 سے 33، ان کا عنوان ہے منہ کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جا سکے گا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مستقل فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ और वो क्या कि क्यामत तक इस दीन को कायम रखेगा, महफूज रखेगा। पिछले दीन कायम ना रह सके क्योंकि लोगों ने उसके अंदर मिलावट कर दी। अल्लाह ताला ने इस दीन के अंदर मिलावट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वो हिदायतनामा जो इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लम तक एक ही था, लेकिन पिछली कौमों ने उसमें तब्दीलियाँ की। अल्लाह ताला ने नबी सल्लम के जरिए वो दीन पेश किया जिसमें तब्दीली मुमकिन नहीं थी। आज इस्लाम के खिलाफ कितनी ही कोशिशें क्यों ना हों, लेकिन दलाइल की बुनियाद पे आज भी इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसमें कोई तब्दीली नहीं। पिछले दीन आज खो चुके, उनकी तस्वीर आज धुंधली हो गई। क्यों? कि उसमें इंसानों के ख्यालात शामिल हो गए। आज हम जब इस्लाम के खिलाफ लोगों को किताबें लिखते और ऐसे कुरान छापते हुए देखते हैं कि जिसमें इस्लाम की बुनियादी चीजों को बदल दिया गया, तो परेशान होने लगते हैं। हालांकि परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुसलमान अपना काम करते रहे, अल्लाह खुद ही उन लोगों से निपटेगा जो उसके किताब के अंदर तब्दीलियां करते हैं। आज देखिए कि इस्लाम को मिटाने की कितनी कोशिशें की जाती हैं, इस्लाम उतना ही फैल रहा है। शम्मा को जरा तसव्वुर में लाइए तो इस आयत को बहुत ही खूबसूरत समझेंगे। एक शख्स हाथ में शमा यानी कैंडल लाइट मोमबत्ती जला के खड़ा हो, सबसे ज्यादा मोमबत्ती को खतरा किसकी तरफ से है? जिसके हाथ में मोमबत्ती है, वो चाहे तो उसको फूंक के बुझा दे, चाहे तो उसको हाथ से गिरा दे, चाहे तो उसकी केयर करे और वो जलती रहे। बस आज इस्लाम की शम्मा किसके हाथ में है? मुसलमान के हाथ में। आज के दौर में भी इस्लाम की शम्मा को सबसे बड़ा खतरा मुसलमान से है। जिसके हाथ में शम्मा होती है वो शम्मा का दुश्मन भी होता है और दोस्त भी होता है। आज मुसलमान अगर अपने दीन इस्लाम को उस तरह पेश करता है जैसे इसको पेश करने का हक था, तो आज भी लोग इस इस्लाम की तरफ आएंगे। आज इस शम्मा को बुझाने में सबसे बड़ा खतरा मुसलमानों की बेअमली है। बेअमली है इसकी वजह। इसकी वजह से ये शम्मा लोगों को टमटमाती भी दिखती है। जब हमने अपनी शम्मा को बुझा दिया, हमने उस नूर को तो अपनी फूकों से खुद बुझा दिया। आज इस्लाम के खिलाफ बयान देने वाले मुसलमान है। तारीख को खोल के देखिए, चंद दिन पहले का जो वाकया तस्करा किया कि एक मुसलमान औरत ने किसी चर्च में अगर मर्दों और औरतों को नमाज पढ़ाई तो वो काफिर औरत नहीं थी। उसने वहां खड़े होकर बयान दिए कि मुसलमान ये कहते हैं, इस्लाम ये कहता है। वो काफिर बन के नहीं, वो मुसलमान बन के इस्लाम की शम्मा को बुझाती है। लोग सिर्फ इसको प्रमोट करते हैं। याद रखिए, मुसलमान इस शम्मा को बुझाने की कोशिश करते हैं तो नॉन मुस्लिम उसमें उनकी मदद करते हैं। एक दफा मुसलमान अगर अपने दीन को खूबसूरत तरीके से पेश कर दें, किसी की जरूरत नहीं। आप अपनी शम्मा के इर्द गिर्द एक बैरियर बना सकते हैं। आप अपने इस्लाम की इतनी इंटेंसिटी बढ़ा लें कि फूक से ना बुझे। देखिए, आप जरा तसव्वुर में लाएं कि शम्मा है ना, उसका फूके हल्की सी फूक मारेंगे ना, वो और भड़केगी। उसके लिए आपको एक खास दर्जे की फूक मारनी पड़ती है। यही फर्क है आज के इस्लाम और कुफर के अंदर जो बातें हैं। आज इस्लाम अगर मुसलमान उसको इतना तेज शोला बना ले कि काफिरों की हर फूक हल्की पड़ जाए। होता क्या कि जब इस्लाम की शम्मा टुमटुमाती है तो उनकी हल्की सी फूक से ऐसा लगता है कि इस्लाम चला जाएगा। अल्लाह के नबी ने लोगों को सिर्फ दीन फैलाने का हुक्म नहीं दिया था बल्कि उसको नाफिज भी किया था। आज अब लिटरेचर आम करें, आज इस्लाम की बात जैसे मर्जी आम करें, लेकिन जब तक उसको अपनी जिंदगियों में नहीं लाएंगे, जब तक वो इस्लाम लोगों को आपके अमल में नहीं दिखेगा, उस वक्त तक आप देखेंगे कि इस्लाम बुझता रहेगा। आज मुसलमान अपने रवैयों से, अपने तर्ज जिंदगी से बताएंगे कि यही है एक रोशन रास्ता, कभी भी कोई उसका नुकसान नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिकदाद बिन अस्वद की एक रिवायत है कि अल्लाह ताला इस इस्लाम को घर घर में दाखिल करेगा जब इज्जत वाला इसको एजाज के साथ लेगा और मगलूब को मगलूबियत के साथ देगा। और आज देखे, नेट ने ये सहूलतें दे दी, हर घर में इस्लाम का पैगाम पहुंचा हुआ है। कोई उसको इज्जत बना के उसको कबूल कर लेता है, कोई उसको नहीं मानता, वो अलग बात है। आज भी इस्लाम अपने दलाइल की बुनियाद से कितना खूबसूरत दीन है। एक हल्का सा तकाबुल आपके सामने रखूंगी कि आज भी अगर क्रिश्चियनिटी फैल रही है तो वो कहाँ फैल रही है? दुनिया के गरीब मुल्कों में, लालच की बुनियाद पे। उनकी गुरबत को खरीदते हैं, उनको मिशनरीज के नाम पे ऐसे ऐसे लालच देते हैं कि वो उनका दीन कबूल करते हैं। इसके बरक्स आप देखिए कि इस्लाम कहाँ फैल रहा है? दुनिया के पढ़े लिखे मुल्कों में फैल रहा है। क्यों? कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो ज्यादा अच्छी बात समझते हैं, वो किसी लालच में नहीं आते। उनको पता है कि इस्लाम के दलाइल बड़े मजबूत हैं। आज भी आप देखिए कि वो लोग इस काम को करने के लिए तैयार हैं जो इस्लाम को हकीकत में समझने लगते हैं। तो लिहाजा इस वक्त इन आयतों को पढ़ते हुए हमारी दुआ क्या होनी चाहिए कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि इस रोशनी में अपना हिस्सा डालें, इसको फैलाएं, इसको बढ़ाएं। और ये सिर्फ बातों से नहीं होगा, ये सिर्फ नारों से नहीं होगा, ये होगा तो अमली कोशिशों से होगा। और अल्लाह के कलाम को पढ़ना, पढ़ाना, इसके अंदर मदद करना, इसको बढ़ाना, ये सिलसिले की पहली कड़ी है। अल्लाह ताला हमें इस खिदमत के लिए चुन ले और फिर इसको कबूल भी फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरा मिनल अहबारी व रुहबान। अब यहाँ से आगे आप देखेंगे कि इससे ऑपोजिट किरदार कौन से होते हैं। ईमान वालों, अक्सर उलमा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो लोग सोने चांदी का खजाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इनको दर्दनाक अजाब की खबर पहुंचा दीजिए, जिस दिन इस खजाने को आतिशे दोजख में तपाया जाएगा, फिर इससे इनकी पेशानी और इनके पहलू और पीठें दागी जाएंगी। इनसे कहा जाएगा, ये है जिसे तुमने अपने लिए खजाना बना रखा था, बस अपने खजानों का मजा चखो। ये थी आयत नंबर 34 से 35। इसका उनवान है अल्लाह के दीन में मिलावट करने वाले। देखिए, किसी दूसरे का माल लेने का एक ही तरीका है कि इंसान उसकी मर्जी से ले। जो लोग किसी से उसका माल उसकी मर्जी के बगैर लें, वो मुजरिम है। इसके अंदर बदतरीन किस्म है कि जब दूसरे का माल दीन का नाम लेकर हथिया लिया जाए। यहाँ मजहबी तबके पर तनकीद है। उलमाए यहूद हों या नसारा हों या आज के बिगड़े हुए मुसलमान हों, उन्होंने लोगों का माल दीनी हीले बहानों से ले लिया। जब जवाल आया बनी इसराइल पे, तो उस वक्त उनके बड़े जो थे, जिस दीन को फैलाए हुए थे, वो झूठी कहानियों का दीन था, वो हदी और नजरानों का दीन था। जब बुजुर्गों की करामतों को दीन बनाकर पेश करते और इसके ऊपर लोगों से बड़ी बड़ी रस्में लेते, हालांकि जो दीन वो लोगों के दरमियान तकसीम कर रहे थे, वो उनका अपना बनाया हुआ दीन था। अल्लाह ताला को इस पे गैरत आती है। ऐसे लोग जो लोगों को दीन के नाम पे एक्सप्लॉइट करें, ऐसे माल को यहाँ कंज कहा गया। और ऐसा कंज क्या है जो कयामत के दिन इंसान को एक वबाल की सूरत में मिलेगा, और ऐसा माल जो दीन के नाम पे नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया जाए, वो बहुत ही ज्यादा इंसान के लिए वबाल होगा। मुझे तो ये आयतें पढ़ते हुए खौफ आ रहा है, और उन तमाम भाई बहनों के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि जो दीन के नाम पे जगह हासिल करते हैं, जो दीन के नाम पे फंड्स लेते हैं लेकिन उसको अपने दुनियावी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको अपनी अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, किसी से दीन के नाम पे माल मांगना, ये बहुत बड़े हौसले की बात है। एक ये कि माल वाला कहे कि मेरा माल है, ये काम है, इसमें आप लगा लें, ये और बात है, लेकिन एक यह है कि हमें माल दो। आज कितना हमें दीन के नाम पे झोली फैलाना। आज वो रिवायतें सबसे ज्यादा दीन वालों को याद होती हैं जो लोगों की जेब से उनका माल निकलवाने वाली हैं, लेकिन जरा सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक बल्ब अगर फालतू जल गया ना किसी के लिए हुए पैसे में से, तो याद रखिए कल वो उस दीनदार को उसका जवाब देना पड़ेगा। आज क्यों हम लोग दीन के नाम पे चंदे मांगते हैं? इसलिए कि हमारी प्लानिंग्स नहीं होती, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, हम बड़ी बड़ी जमीनें हासिल कर लेते हैं, फिर उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए चंदा जमा करते हैं, फिर जब सारी कोशिशों के बाद बिल्डिंग बन जाती है, फिर उसके मेंटेनेंस के लिए चंदा मांगते हैं, फिर उसके ओवरहेड एक्सपेंसिस के लिए हर महीने हमको हजारों चाहिए होता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि सारी जिंदगी एक तालिब इल्म पहले ज़कात के पैसों पर तालीम हासिल करता है, और उसके बाद वो फुली ट्रेन हो चुका होता है कि अब वो अपनी एक अलग जामिया बनाए, दो कमरे का घर है और उसके ऊपर जामिया का बोर्ड लगाए, क्योंकि उसका अपने उस्ताद से मैल नहीं खाता, बात वो उसके नजरियात को प्रमोट नहीं करना चाहता, वहां उसको महकूम बन के रहना चाहता है, यहाँ लीडर बनेगा, और फिर वो एक नई जमात तैयार करता है जो सड़कों पे चंदे के लिए जमा हुए हैं। मैं हैरान होती हूँ ये किस दीन को लोगों के अंदर लाते हैं। अल्लाह के नबी ने कभी लोगों से चंदा नहीं मांगा था। बात यह कि इस बात का एहसास कि जो माल मैं लोगों से अल्लाह के नाम पे लेता हूँ, ये इंसान की रातों की नींद उड़ा देता है। कोई खुद अपनी खुशी से दे जाता है और उसको कहीं अच्छी जगह पे लगा देना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कहां लोगों को ये कहा जाए कि मुझे माल दिया जाए। अल्लाह ताला हम सबके लिए खुद ही काफी हो जाए, और कभी कोई वो वक्त ऐसा ना आए कि अल्लाह के दीन के लिए काम करने के लिए उसके बंदों से मांगना पड़े। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाह हिस्ना अशरा शहरा, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक किताबुल्लाह में 12 की है। इसी दिन से जब से आसमान और जमीन को उसने पैदा किया, इनमें से 4 हुरमत और अदब के हैं, यही दुरुस्त दीन है। तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो, और तुम तमाम मुशरिकों से जिहाद करो जैसे कि वो तुम सबसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। महीनों का आगे पीछे कर देना कुफर की ज्यादती है, इससे वो लोग गुमराही में डाले जाते हैं जो काफिर हैं। एक साल तो इन्हें हलाल कर लेते हैं और एक साल उसी को हुरमत वाला कर देते हैं, और अल्लाह ने जो हुरमत रखी है इसके शुमार में तो मुवाफकत कर लें, फिर इसे हलाल बना लें जिसे अल्लाह ने हराम किया है। इन्हें इनके बुरे काम भले बनाकर दिखा दिए गए, और कौमे कुफार की अल्लाह ताला रहनुमाई नहीं करता। ये थी आयतें 36 और 37। इनके भी दो उनवान हैं। पहला उनवान है यकसानियत जमूद पैदा करती है, तब्दीली नई कुव्वते अमल को बढ़ाती है। दूसरा टॉपिक लिखिए, वो दुनिया की खातिर एक होते हैं, तुम दीन की खातिर एक हो जाओ। पहली बात थी यकसानियत की। अल्लाह ताला ने दीन के अहकामात जो दिए हैं उसमें यकसानियत नहीं है, इज्तमाइयत तो है, यकसानियत नहीं है। हर साल शमसी कैलेंडर के बदलने से हज, रमजान और दूसरे दीनी रिचुअल जो है वो मुख्तलिफ महीनों में आते हैं। ये इसी असूल के तहत हैं कि अगर हज हर साल एक ही महीने में आता और अगर रमजान हर साल एक ही महीने में आते तो लोग बोर होने लगते, हमेशा एक ही वक्त है। सबको पता है कि हर दिन हर साल जो है रोजा वो बस 12 घंटे का है, आप जरा सोचिए, अगर एक ही दिन होता, जैसे चांद की जो तरतीब है, अगर उसके साथ हज होता, हर साल जनवरी में आता, तो हम सर्दियों के रोजे रख रख के थक चुके होते। हमारा दिल चाहता हाय प्यास लगे, हाय भूख लगे, हाय ये करें, फिर ठंडी चीज पिए। कितना अच्छा था, गर्मी में रोजा खोलते थे तो रूह अफजा पीते थे। अब तो देखे हर दिन ही जो है हमें बस चाय से खोलना पड़ता है। इंसान है ना, बदल जाता है। इसी तरह कभी अगर सिर्फ गर्मियों के रोजे होते तो हम कहते हाय क्या अच्छा होता चाय के साथ रोजा खोलते। अल्लाह ने बंदे को हर टेस्ट चखाने के लिए एक मुकर्रर कर दिया, कभी गर्मियों के रोजे, कभी सर्दियों के रोजे, कभी गर्मियों का हज, कभी सर्दियों का हज, ताकि यकसानियत से इंसान के अंदर जमूत पैदा ना हो। तब्दीली इंसान के अंदर नई कुव्वत अमल पैदा करती है। लेकिन मक्का वालों को ये तब्दीली गवारा नहीं थी। होता क्या था कि हज जो था वो उनका एक इकोनॉमिकल इशू बन चुका था। अब कभी हज गर्मियों में आता, कभी सर्दियों में आता, इसका असर उनकी तिजारत पे पड़ता था, उनकी सेल बदल जाती थी। लिहाजा इन्होंने क्या किया कि दीनी मसलहत के मुकाबले में दुनिया की मसलहत को अहम समझा और एक बात साबित कर ली कि क्यों ना हज की एक ही तारीख मुकर्रर कर दी जाए। अब वैसे तो मुमकिन नहीं थी। हाँ, कबीसा की एक रस्म यहूद और नसारा की इजाद करदा थी, और वो क्या था कि हर 3 साल के बाद एक महीना ऐड कर देते थे। तो वो जो हर साल 10-10 दिन का फर्क शमसी और कमरी का बदलता था, वो बराबर होता। नतीजा क्या होता कि हर साल फिर हज एक ही मौसम में आता, और इसी तरह फिर जो महीने थे दूसरे हुरमत के, उसके अंदर भी इन लोगों ने अपनी मर्जी से आगे पीछे करना शुरू कर दिया। नसी का महीना था, कभी लड़ने को दिल चाहता तो कहते इस साल मुहर्रम जो है सफर में आएगा, और सफर को मुहर्रम बना लेते। अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें खत्म करके मुसलमानों को कहा कि ये जो महीने हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं। उसने लोगों को मुख्तलिफ तरीके के मौसमों में जो इबादत का मौका दिया, इससे मुराद क्या कि सारा साल अल्लाह ताला की इबादत हो सके। और तब्दीली इंसान के लिए बहुत ही खूबसूरत माहौल पैदा कर देती है, जिसकी वजह से वो फिर खुशी खुशी नेकी करता है। दूसरी चीज इन आयतों में थी, आप इसको हाईलाइट करेंगे, आयत नंबर 36 है कि कातिलुल मुशरिकीन काफा कमा युकातिलूनकुम काफा। ये है वो जुमला जिसकी बुनियाद पे हमने ये टॉपिक रखा कि वो दुनिया की खातिर एक होते हैं, तुम दीन की खातिर एक हो जाओ, तुम भी मिलकर लड़ो उनसे जिस तरह वो तुमसे मिलकर लड़ते हैं। इससे पता चल गया कि काफिर अल्लाह से बेखौफ होकर मुत्तहिद होते हैं, तुम अल्लाह के खौफ पर मुत्तहिद हो जाओ। वो मनफी मकासिद के लिए बाहम जुड़ते हैं, तुम मुस्बत मकासिद के लिए आपस में जुड़ने लगो। वो दुनिया की खातिर एक होते हैं, तुम आखरत की खातिर एक हो जाओ। يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله। ए ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि चलो अल्लाह के रास्ते में कूच करो तो तुम जमीन से लग जाते हो? क्या तुम आखरत के इवज दुनिया की जिंदगी पर ही रीझ गए हो? सुनो, दुनिया की जिंदगी तो आखरत के मुकाबले में बहुत थोड़ी सी है। अगर तुमने कूच ना किया तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारे सिवा और लोगों को बदल लाएगा। तुम अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अगर तुम इनकी यानी नबी की मदद ना करोगे तो अल्लाह ने इनकी मदद उस वक्त भी की जब इन्हें काफिरों ने इनके देश से निकाल दिया था, और दो में से दूसरा जबकि वो दोनों गार में थे, जब ये अपने साथी से कह रहे थे गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है। बस जनाबे बारी ताला ने अपनी तरफ से तस्कीन इस पर नाजिल फरमा कर इन लश्करों से इसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। इसने काफिरों की बात पस्त कर दी, और बुलंद अजीज तो अल्लाह ही का कलमा है, अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। ये है आयत नंबर 38 से 40, 38 से 40। इनका उनवान है दिल का फर्क अमल के फर्क में बदल जाता है। यहाँ से लेके अब सूरत के आखिर तक गज़वे तबूक का तस्करा है। कुछ आयतें जंग से पहले की, कुछ आयतें जंग के दौरान की, और कुछ आयतें जंग के बाद की। ज़रूरत है इस बात की कि हल्का सा उसका इजहार कर दिया जाए। हम उस माहौल को अगर समझेंगे नहीं तो ये आयतें हमें समझ नहीं आएंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबरें पहुंची कि कुछ नॉन मुस्लिम जो रोमन्स थे वो मुसलमानों पे हमला करने की सोच रहे हैं। सन 9 हिजरी थी, मुसलमानों की तरफ दुश्मनों की आंखें खुलनी शुरू हो गई थी, अभी हाथ बढ़े नहीं थे। पता चला कि मुसलमानों के खिलाफ सरहदों पे फौजें जमा हैं और दूसरे कबाइल को बुलाया जा रहा है इस दावत पे कि आओ और मुसलमानों पे मिलके हमला करते हैं। इसके बाद दो सूरतें सामने आ सकती थीं। एक तो थी डर के दुबक जाते, माफीनामा लिख के भेजते, तुम जो शर्तें दो हम मंजूर करते हैं, बस तुम हमारी तरफ उंगली ना उठाना। ये एक सोच थी और ये आसान थी, और हालात का ज़ाहरी तकाजा भी यही था। क्योंकि मुसलमानों के पास असबाब नहीं थे। खड़ी फसलें तैयार थी, पूरे साल की फसल काटने के दिन थे, शदीद गर्मी थी। मुसलमान मदीना में थे, दुश्मन तबूक के मुकाम यानी उससे भी आगे रोम की सरहदों पे था। ये पहली सूरत बहुत आसान थी। उस दौर में अगर कोई भी साहिब अकल होता तो कहता यही तरीका ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता कि सारी जिंदगी के लिए मुसलमान दब जाते। वो काफिर एक दफा फिर मसलहत ना करते, वो हर लम्हे धमकी देते। मुसलमान मदीना में कोई काम करते तो उसके लिए पहले उनको वहां से इजाजत लेनी पड़ती। मुसलमानों के कानून मदीना में लागू होते लेकिन वो रोम से बन के आते। और ये बात अल्लाह के नबी को गवारा नहीं थी कि मुसलमान दब के रहने वाला दीन नहीं, ये मगलूबियत का दीन नहीं। दूसरी सूरत क्या थी कि चलो तुम क्या होगे, हम चलते हैं। ये वो जंग थी जो दिफाई जंग नहीं, इकदामी जंग थी। अल्लाह के नबी ने कहा ये हमारे खिलाफ जमा हो रहे, हम इनकी तरफ चलते हैं। एलाने आम था, जिहाद फर्ज ऐन बन चुका था। एक एक बंदा कीमती था कि आप सब निकलो, सबको जाना है, हम इनको मजा चिखाते हैं। आज के दौर में तो कोई इसका तस्वुर नहीं कर सकता। ये तो ऐसी है जैसे हाथी को मारने के लिए चींटी अपना लश्कर लेके चल पड़े। लेकिन कभी कभी ऐसे हालात आते हैं, कुफर से दबने की बजाय कुफर की आंखों में आंखें डाल के देखना पड़ता है। और ये असल में एक आखिरी जर्ब थी मोमिनों के ईमान को जाहिर करने की और मुनाफिकों के निफाक को जाहिर करने की। अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने के दिन करीब थे। अल्लाह तआला चाहता था कि मुसलमानों का लश्कर ऐसे खोटे लोगों से पाक हो जाए जो आपके बाद कहीं फितने डाल के आपके इस मिशन को नाकाम न कर दें। और ये वाकई वो बात साबित हो गई कि इस मौके पे फिर लोग खुल के सामने आए। अच्छे दिनों में लोग घुले मिले रहते हैं, लेकिन मुश्किलों और आजमाइशों के दिनों में फिर लोग छटने लगते हैं। इस मौके पे फिर मुनाफिकों की एक कसीर तादाद सामने आई। हम इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे और आगे हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन यहाँ जो बात बता दी वो यही है कि इस्लाम से लोगों का ताल्लुक दो दर्जों पर होता है। एक वो होता है कि इस्लाम बंदे की ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाए, और दूसरा क्या होता है कि सारी दिलचस्पियां तो हकीकत में दुनिया से रहें लेकिन इस्लाम के साथ एक जाहरी ताल्लुक जुड़ जाए। पहली किस्म के लोगों को अल्लाह यहाँ सच्चे मोमिन कहता है और दूसरी किस्म के लोगों को शरीयत में मुनाफिक कहा गया। हम सब के लिए ये आयतें एक चेकलिस्ट बन सकती हैं। और अल्लाह ने सवाल भी कैसे उठाया, मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाह। सबीलिल्लाह का किताल नहीं का, जंग नहीं का, इसलिए कि हम में से किसी की जिंदगी में कोई जंग नहीं है और अल्लाह ना करे कोई पेश आए। हम सबको दावत दी अल्लाह के दीन की। हमारा अल्लाह के रास्ते में निकलना, अल्लाह के दीन के लिए निकलना, अल्लाह के कलाम के लिए निकलना है। क्या आज हमारा ये हाल तो नहीं कि जरा कोई अच्छी बात हो, कोई आसान बात हो तो हम फौरन चलने को तैयार हैं, और जहाँ 2-3 घंटे बैठना पड़े तो हम बैठने को तैयार ही नहीं। जहाँ खूब बातें भी होती रहें, साथ नफ्स की बातें भी हों, वहाँ तुम खुशी खुशी जाएं, और जहाँ नफ्स पे रोक लगा के बैठना पड़े वहाँ मुश्किल हो। ये लोगों का इम्तिहान होता है कि कहाँ चलते हो। एक तरफ वो दीन है कि जिसको करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन हो गई कि एक काम कर लिया, एक वो दीन है कि जिसके बाद इंसान की रूह इसकी गवाही देती है कि यही मेरी गजा थी। ऐसे कामों को और ऐसी चीज़ों को जो लोग इख्तियार कर लेते हैं वो असल में अपने सच्चे होने का सबूत दे देते हैं कि अल्लाह हम तेरे दीन के साथ सच्चे हैं। यहाँ धमकी भी है, तुम नहीं करोगे ये काम अल्लाह यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, औरों को ले आएगा लेकिन तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। और यहाँ इशारा है अबू बकर सिद्दीक की उन 3 रातों का जो आपके साथ गौरे सौर में गुजारी गई। एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लम भी बैठे थे और आपकी बीवी हजरत आयशा भी थी। खुला आसमान था सितारों से भरा हुआ। हजरत आयशा के दिल में सवाल उठा, अल्लाह के नबी कोई ऐसा भी होगा जिसकी नेकियां आसमान के सितारों जैसी होंगी? पहले तो इस सवाल पे बात कर लें कि ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह के नबी कोई ऐसा भी होगा जिसकी दौलत आसमान के सितारों जैसी होगी, अल्लाह के नबी को ऐसा भी होगा जिसकी जिसके सोने के जेवरात की तादाद इतनी होगी। सवाल सोच को बता रहा है कि जिनकी निगाह आखरत पे लगी होती है वो नेकियों को जमा करना चाहते हैं, वो माल को नहीं करते। खैर लाड में पूछ लिया, अल्लाह के नबी ने कहा हाँ आयशा, वो शख्स उमर है रजी अल्लाह अन्हो के जिनकी नेकियां आसमान के सितारों जैसी होंगी। आयशा का दिल बुझ गया, कहेंगे अल्लाह के नबी मैं तो सोच रही थी कि आप मेरे बाप का नाम लेंगे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो का। आयशा तुम अबू बकर की नेकियों की बात करती हो और मेयार आसमान का सितारे, यानी ये खुलासा बता रही हूँ कि अबू बकर की नेकियां आसमान के सितारों जैसी, हालांकि अबू बकर की तो सिर्फ उन 3 रातों की नेकियां जो उन्होंने मेरे साथ गारे सौर में गुजारी उम्र की सारी जिंदगी की नेकियों पे भारी हैं। क्यों जान के लाले, पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, जान की कीमत है, 100 ऊंट है, लोग निकले हुए आपको मारने से ज्यादा इस शौक में कि हमें 100 ऊंटों की कीमत मिलेगी। पता क्या चला कि असल ये बात नहीं कि हम इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं, असल ये बात है कि हम किन हालात में कर रहे हैं। जब इस्लाम की फतह होती है ना, और जब दीन खूब पनपता हुआ दिखता है, जब कोई तहरीक, कोई मिशन, कोई काम ऐसे होता है कि लोगों को उसके अंदर दिन रात बरकत और खैर दिखती है, ऐसे वक्त में बड़े लोग दीन की तरफ आने वाले होते हैं। लेकिन वो वक्त जब इस्लाम की कश्ती डूबने के करीब हो, जब दुश्मन उसको फूकों से बुझाना चाहे, उस वक्त जो दीन पे जमेगा, अल्लाह उसका मुकाम अपने नबी के सहाबा वाला कर देगा। और अल्लाह ताला इस्लाम पे ऐसी कई घड़ियां लाया। तारीख को खोल के देखिए, एक ऐसे ऐसे वक्त गुजरे, ऐसे लगता था इस्लाम मिट जाएगा। वो अल्लाह के नबी के दौर में तो बदर का एक मौका था, और तबूक के मौके पे या हिजरत की रात के मौके होंगे, लेकिन आज भी क्यामत तक इस्लाम पे ऐसे मुकाम आते रहेंगे। होता क्या कि जब इस्लाम पे कोई मुश्किल वक्त आता है, तो अपने भी जो होते हैं वो बिगड़ने लगते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं। बड़े प्यार से अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर ले कि जो इस्लाम के ऊपर मुश्किल आने के वक्त में इस्लाम पे जमा रहा हूँ। मैं वो काम दीन का करूं जो कोई और ना कर रहा हो, मुझसे उन हालात में काम करवा जब मेरे लिए मुश्किलों में फिर भी करूं। देखिए, जब हम पे कोई मुश्किल आती है ना, हम उस वक्त वो काम छोड़ देते हैं। सॉरी, एक रिजाइन लेटर दे सकते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि नो आई एम बिजी। ठीक है, अच्छी बात है, जो उसने किया अल्लाह उसका वो भी कबूल करे। लेकिन जो इस मुश्किल में भी कहते हैं नो आई एम नॉट बिजी, आई एम ऑन लीव, आई एम ऑन वेकेशन, क्या बात है, बच्चा पैदा हो रहा है ना, बीमारी थोड़ी है, 8 दिन के बाद आ जाऊंगी वापस, कहीं जाना है कोई बात नहीं, हज है, उम्र है कोई बात नहीं, ये जिंदगी का हिस्सा है। देखिए, हम में से कोई 24 घंटे अवेलेबल नहीं रह सकता दीन के लिए, लेकिन अल्लाह ने नमाज से तो छुट्टी दी नहीं किसी को। क्यों? इसलिए कि कभी भी इस्लाम इस तरह से नहीं फैलता